दिन भर तारीख 15 मई दिन रविवार आपके साथ मैं अशोक कुमार। इस्लामिक स्टेट के हमलों में 40 लोगों की मौत। इराक में एक प्लांट पर किया हमला तो यमन में रंग रूटों को बनाया निशाना। तमिलनाडु और केरल में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए तैयारी पूरी। होगी एक खास रिपोर्ट केरल में हिंसा की राजनीति पर।
उसमें से आधा आदमी लोग उधर ही खड़ा है तो बाकी पीछे ही खड़ा है। ये जो बाहर आया ना वो दोनों साइड से आदमी लोग मिला के इनको मार दिया।
और संडे दिन भर में आज मिलिए अभिनेता इमरान हाशमी से जो बड़े पर्दे पर बने हैं क्रिकेटर अजरुद्दीन।
खास करके जो अजहर भाई जो उन पे बीती जो चीजें जो कठिनाइयों का सामना उन्हें करना पड़ा वो सब चीजें हमें दिखाई हैं इस फिल्म में।
लेकिन सबसे पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार हरिता कांडपाल से। यमन में अधिकारियों का कहना है कि देश के दक्षिण में हुए एक आत्मघाती हमले में पुलिस में हाल ही में भर्ती हुए 25 जवान मारे गए हैं। सुन्नी चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा है कि मुकाला शहर में पुलिस मुख्यालय पर हमला तब किया गया जब ये नए भर्ती हुए जवान कतार में खड़े हो ही रहे थे। रिपोर्टों के मुताबिक मुकाला शहर में अस्पताल में कम से कम 25 लोगों का इलाज जारी है। इराकी अधिकारियों के मुताबिक चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट ने राजधानी बगदाद के उत्तरी इलाके में एक गैस प्लांट पर आत्मघाती हमला किया है। सुरक्षा सूत्रों का कहना है कि कम से कम 14 लोगों की इस हमले में मौत हो गई है और 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट ने हमले की जिम्मेदारी ली है। इराक के आंतरिक मंत्रालय के प्रवक्ता ब्रिगेडियर सादमान ने हमले के बारे में ये बताया।
محاولة اقتحام معمل غاز التاجي
ताजी में आतंकवादी गुट के 6 सदस्यों ने प्राकृतिक गैस के एक प्लांट में घुसने की कोशिश की। पहले कार बम को गेट पर उड़ाया गया, फिर आतंकवादी गैस प्लांट में घुस गए और एक गैस टैंकर को आग लगा दी। उसके बाद हमलावरों ने दूसरे गैस टैंकर को भी उड़ाने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बलों ने गैस सप्लाई पाइप को निकालकर स्थिति पर काबू पा लिया। सुरक्षा बलों ने 2 आत्मघाती हमलावरों को मार दिया और 3 आत्मघाती हमलावरों ने खुद को उड़ा दिया। ये थे ब्रिगेडियर सादबान के शब्द। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि सीवान में पत्रकार की हत्या की खबर से वो दुखी हैं और हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। बिहार के सीवान में हिंदुस्तान अखबार के पत्रकार राजदेव रंजन की शुक्रवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। लखनऊ में विभिन्न पत्रकार संघों के वरिष्ठ अधिकारियों ने नीतीश कुमार को ज्ञापन सौंपकर राजदेव रंजन की हत्या के दोषियों पर जल्द कार्रवाई की मांग की। इस मामले में अब तक 3 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। फ्रांस में 17 पूर्व महिला मंत्रियों ने एक अखबार में खुला पत्र लिखकर राजनीति में यौन शोषण के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान किया है। अलग अलग पार्टियों के पूर्व महिला मंत्रियों ने दावा किया है कि फ्रांस में हर 5 में से एक महिला को यौन शोषण का सामना करना पड़ता है। इन महिला पूर्व मंत्रियों का कहना है कि अब ये और नहीं चलने दिया जाएगा और कुछ पुरुषों को अपने बर्ताव में बदलाव लाना होगा। महिलाओं की मांग है कि मौजूदा कानूनों को ठीक से लागू किया जाना चाहिए। पिछले हफ्ते फ्रांस की नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर डेनिस बॉपिन पर यौन शोषण के आरोप लगे थे जिसके बाद उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था। रूस के सरकारी मीडिया ने कहा है कि एक रूसी नाव के क्रू सदस्यों को उत्तर कोरिया के तट रक्षक दलों ने रिहा कर दिया है। इन लोगों को शुक्रवार को हिरासत में लिया गया था। बीबीसी समाचार।
स्वागत है आपका बीबीसी हिंदी के कार्यक्रम दिन भर में। ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी सुन रहे हैं लाइव और आपके साथ मैं अशोक कुमार। आज बात करते हैं सबसे पहले इस्लामिक स्टेट की जिसने आज एक के बाद एक 2 बड़े हमले किए। एक तरफ इराक की राजधानी बगदाद के पास एक गैस प्लांट को निशाना बनाया गया तो दूसरी तरफ यमन के मुकाला शहर में पुलिस मुख्यालय पर आत्मघाती हमला हुआ। मुकाला में 25 रंगरूटों को अपनी जान गंवानी पड़ी जबकि बगदाद के पास ताजी प्लांट पर हुए हमले में 14 लोग मारे गए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस्लामिक स्टेट से निपटने की ज़रूरत पर लगातार जोर दिया जा रहा है और कई कार्रवाइयां भी हो रही हैं, लेकिन इस बीच उसके हमले भी लगातार जारी हैं। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यूरो का सार सुनिए कशफी शमायला से।
हमला बगदाद से 20 किलोमीटर दूर ताजी में हुआ, जहां विस्फोटकों से लदी 3 कारें एक संयंत्र के गेट पर उड़ा दी गईं। इसके बाद 6 आत्मघाती हमलावर विस्फोटक बेल्ट पहने हुए गैस टैंक के पास पहुंचे। इससे पहले कि सुरक्षा बल कुछ समझ पाते, आत्मघाती हमलावरों ने गैस टैंक को उड़ा दिया। सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि इस हमले में 14 लोग मारे गए हैं, जबकि 20 से ज्यादा घायल हैं। घटनास्थल से मिले वीडियो में प्लांट पर आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती दिख रही हैं। जो लोग मारे गए हैं उनमें प्लांट पर काम करने वाले लोगों के अलावा सुरक्षा बलों के जवान भी शामिल हैं। इराकी सेना के प्रवक्ता ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि हमले में 3 गैस टैंकों में आग लग गई है, लेकिन सुरक्षा बलों ने स्थिति को काबू में कर लिया है। पिछले दिनों आईएस ने बगदाद में कई हमले किए हैं। इससे पहले बुधवार को बगदाद में एक बाजार में कार बम धमाकों में कम से कम 93 लोगों की मौत हो गई थी। इराक में सत्ता संघर्ष के बीच नए कैबिनेट का गठन नहीं हो पाया है, जिससे आईएस के खिलाफ इराक की लड़ाई को लेकर संशय खड़ा हो गया है। वहीं दूसरी तरफ यमन के मुकाला शहर में आईएस के चरमपंथियों ने एक पुलिस मुख्यालय को निशाना बनाया, जिसमें 25 रंगरूट मारे गए हैं। इस्लामिक स्टेट ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि मुकाला शहर में पुलिस मुख्यालय पर हमला तब किया जब नए भर्ती हुए जवान कतार में खड़े हो ही रहे थे। पिछले महीने ही यमन की सरकार की सेना ने मुकाला को अलकायदा के कब्जे से मुक्त कराया था। यमन में 2011 से गृह युद्ध चल रहा है और आईएस या उससे जुड़े संगठन भी वहाँ हमले करते रहते हैं। अब तक हिंसा के कारण वहां से 20 लाख लोग विस्थापित हुए हैं। सऊदी अरब समर्थित सैनिक गठबंधन ने चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट के विरोधी गुट अलकायदा इन द अरेबियन पेनिनसुला को बाहर कर दिया है। अलकायदा इन द अरेबियन पेनिनसुला के शहर से बाहर होने के बाद से मुकाला में आईएस का ये दूसरा हमला है। पिछले हफ्ते सैनिकों पर एक कार बम धमाके की जिम्मेदारी भी आईएस ने ली थी। सीरिया और इराक में इस्लामिक स्टेट को हालिया कार्रवाइयों में नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन लगातार हो रहे उसके हमलों से पता चलता है कि अब भी कितना बड़ा खतरा है।
बीबीसी संवाददाताओं का भेजा ब्यौरा आपको सुना रही थी कशफी शमाइल।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
और अब रुख करते हैं भारत का, जहां कल केरल और तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। सघन चुनाव प्रचार के बाद अब जनता अपना जनादेश कल ईवीएम में कैद कर देगी। मतदान की किस तरह की तैयारियां हैं दोनों राज्यों में, चलिए बात करते हैं अपने संवाददाताओं से। सबसे पहले रुख करते हैं चेन्नई का, जहाँ मौजूद हैं नितिन श्रीवास्तव। नितिन जी, चुनावों में कहीं लैपटॉप देने की बात हुई, कहीं सोने की गिन्नी बांटने की, कहीं स्मार्टफोन देने के भी वादे हुए, लेकिन जनता के असल वादे, असल मुद्दे जनता के क्या चुनावों में आपको दिखे जो कल मतदान को प्रभावित कर सकते हैं?
देखिए, यहाँ पर जो आप जैसा आपने कहा कि जो फ्रीबी सा कॉन्सेप्ट है कि टीवी से लेकर लैपटॉप से लेकर और तमाम चीजें देने के वादे हुए, और जैसा सुनने में मिल रहा है वो ये है कि बहुत सी चीजें ऐसे कथित तौर पर बटी भी हैं, लेकिन असल जो बात है वो यहाँ पर ये समझ में आ रही है कि लोग जो है वो ये चाह रहे हैं कि तमिलनाडु में एक स्थिर सरकार रहे। अब ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि दरअसल वो जो मौजूदा सरकार है AIADMK जनता की उसको चाह रहे हैं या जो पिछली सरकार थी DMK उसको चाह रहे हैं, क्योंकि तमिलनाडु की जो राजनीतिक इतिहास है उसमें यही होता रहा है कि एक के बाद एक दूसरी सरकारें बदलती रही हैं। लेकिन अशोक जी, इस चुनाव में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि तमाम और ऐसी पार्टियां हैं, कैप्टन विजयकांत जिस तरीके जैसी और भाजपा ऐसी, जिन्होंने लोग ऐसा कह रहे हैं कि आकर इस बार समीकरण बदल दिए हैं, जिसकी वजह से ये चुनाव बहुत टाइट हो गया है, यानी कि बहुत बहुत करीब हो रहा है। और जो तमाम यहाँ पर लोग बातें कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि कोई कह रहा है कि AIADMK दोबारा बना सकती है, DMK दोबारा आ सकती है, लेकिन मुकाबला जो है वो बहुत कांटे का है,
कांटेदार मुकाबला आप बता रहे हैं। कल चुनाव के लिए सभी तैयारी जाहिर है पूरी कर ली होंगी अधिकारियों ने, प्रशासन ने, क्या कुछ खास इंतजाम कुछ है?
बिल्कुल, खास तौर पर जो इंतजाम पिछले 3-4 दिन से तमिलनाडु में खास तौर पर देखा जा रहा है वो पैसों की बरामद की, यानी कैश,
करोड़ों की कुछ ट्रक भी बरामद हुए थे।
जी जी, वो 570 करोड़ के ट्रक बरामद हुए थे, जिसको FBI ने कहा कि उनका पैसा था, कोयम्बटूर से कहीं और जा रहा था। लेकिन उसके अलावा चुनाव आयोग ने तमिलनाडु में साफ तौर पर ऑफिशियली कहा है कि 100 करोड़ के आसपास कैश बरामद हो चुका है जो अनअकाउंटेड है। यानी इस चुनाव कुल में चुनाव आयोग को पैसे के जो है आदान प्रदान को लेकर खास उसकी चिंताएं हैं और उसी के चलते चाक जो है चौबंद सुरक्षा बंदोबस्त।
जी बहुत बहुत शुक्रिया नितिन श्रीवास्तव चेन्नई से। अगले कार्यक्रम में भी आपसे तमाम जानकारी हम लेते रहेंगे। और इसके बाद अब रुख करते हैं केरल का। वहां भी कल विधानसभा की 140 सीटों के लिए वोट डाले जाने हैं। कुल केरल में 141 सीटें हैं जिनमें से एक सदस्य को नामांकित किया जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं कोच्चि से बीबीसी संवाददाता दिव्या आर्य। दिव्या जी, वाम मोर्चा यानी LDF जो है और वो सत्ताधारी UDF को चुनौती देता दिख रहा है। भाजपा भी मैदान में है केरल में, कितना कड़ा मुकाबला दिख रहा है वहां पर?
अशोक जी, बहुत ही कड़ा मुकाबला है। वैसे तो केरल का इतिहास 1982 से ये रहा है कि बारी बारी से वाम का जो गठबंधन है LDF और जो कांग्रेस का गठबंधन है UDF, बारी बारी से वो सरकार बनाते हैं और ये सिलसिला बिल्कुल भी नहीं टूटा है। अभी कांग्रेस की सरकार है तो उस सिस्टम के मुताबिक तो LDF की सरकार बनना तय होना चाहिए, लेकिन पिछली बार भी UDF की जो सरकार बनी थी बहुत ही कम मार्जिन से बनी थी, 4 ही सीटों का फर्क था और इस बार बिल्कुल कांटे की टक्कर है। ये नहीं कह सकते कि LDF का आना तय है, जबकि बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप हैं UDF के ऊपर। वो कितना रोल प्ले करेंगे ये तय करने में कि लोग वापस UDF को लेके आते हैं या LDF को वोट लेके एक बदलाव की तरफ जाते हैं।
जी, ये तो बात हुई पार्टियों की, किस तरह का रुख उनका हो सकता है उन्हें लेकर लोगों में, लेकिन वो क्या मुद्दे हैं जो इस रुख को तय करेंगे, जनता के मतदान को तय कर सकते हैं, पार्टियों के प्रति उनकी सोच को तय कर सकते हैं, क्या कुछ मुद्दे आपको इस दौरान दिखे आपने तमाम कवरेज की प्रचार के दौरान?
अशोक जी, भ्रष्टाचार के मुद्दे के अलावा जो बात आपने भी पिछले सवाल में भी पूछी थी भाजपा के रोल को लेके, तो भाजपा ने यहाँ पे आज तक एक भी सीट नहीं जीती है, लेकिन इस बार बहुत जोर शोर से प्रचार किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी 3 बार यहाँ से होकर गए और जो एक मुद्दा भाजपा और लेफ्ट पार्टीज के बीच में बहुत ज्यादा उभर के पिछले दशकों में आया है वो है हिंसा का। खासतौर पर उत्तरी केरल में जो मालाबार रीजन बताया जाता है वहां पे इतनी हिंसा है राजनीति से जुड़ी हुई कि वो गढ़ माना जाता है वाम दलों का, लेकिन वहां पे अब RSS के जरिए बीजेपी धीरे धीरे अपनी एक पकड़ बना रहा है, लोकप्रियता बटोर रहा है और उस वजह से वाम दलों और RSS के बीच में बहुत हिंसा होती है और पिछले 10 सालों में करीब 100 लोग इस राजनीतिक हिंसा का शिकार हुए हैं। और इसी मुद्दे की पड़ताल करने के लिए मैं उस इलाके में गई, वहां का एक इलाका है कन्नूर जहां पर अभी अभी एक RSS के वर्कर की हत्या की गई थी और वहां से जो जानकारी मैंने जुटाई थी वो आप सुनिए।
वो जो तार से बांधा हुआ ना,
हाँ, झाड़ सा जो है, अच्छा ये तार से
बांधा है ना,
अच्छा इसको पुलिस ने बांध दिया क्या?
अब पुलिस वाले थे, हाँ पुलिस वाले ने बांध
दिया, मतलब घर के ठीक सामने,
घर के ठीक सामने, उसमें से आधा आदमी लोग उधर ही खड़ा है, बाकी पीछे ही खड़ा है। ये जो बाढ़ आया ना, वो दोनों साइड से आदमी लोग मिला के इनको मार दिया।
इसी साल 15 फरवरी को 26 साल के सुजीत की उनके घर के बाहर उनकी माँ बाप की आंखों के सामने पीट पीट कर हत्या कर दी गई। सुजीत RSS के वर्कर थे और उनकी हत्या के आरोप में CPM के 6 वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया है। उस रात को याद कर उनकी माँ सुलोचना अब भी रो पड़ती हैं।
मुंडे के नीचे मारा पैप से, तो ये जो हड्डी है ना ये टूट गया, वो हाथ से पकड़ गया ऐसे घुमा लिया, पर दांत पूरा नीचे गिरा है और हाथ पैर दोनों का हड्डी पूरा पैप से तोड़ गया, तो नीचे गिर गया। वो जाकर बुलाया, माँ ने जाकर बुलाया तो पूरा ब्लड है।
केरल का कन्नूर ये उन्हीं इलाकों में से एक है जहाँ से कम्युनिस्ट आंदोलन के पहले नेता उभरे। यहाँ CPM की जड़ें बहुत मजबूत हैं और RSS के इन जड़ों पर चोट करने की कोशिशों का जवाब ये हत्याओं का सिलसिला है। सुलोचना और उनके पति भी लंबे समय से CPM के समर्थक थे, पर उनके बेटे ने RSS को चुना।
कभी नहीं करेगा
CPM को,
CPM को कभी नहीं करेगा, बाकी
CPM को कभी वोट नहीं करेगा,
कभी नहीं करेगा, क्योंकि वो उतना बेकार पार्टी है, बेकार पार्टी हो गया अभी।
पश्चिम बंगाल की राजनीतिक हिंसा से अलग केरल में ये हमले बहुत सुनियोजित तरीके से हफ्तों या महीनों की तैयारी के साथ किसी एक आदमी को मारने की नीयत से किए जाते हैं, पर CPM या BJP नेता भी खुले तौर पर हिंसा की जिम्मेदारी कभी नहीं लेते। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने ऐसे एक हमले के बाद दिए बयान में कहा था कि RSS BJP के बहुत से वर्कर्स को CPM ने मार डाला है, पर उस हिंसा का जवाब वो वोट से देंगे। पर राजनीतिक हत्या के बदले में जवाबी हत्या केरल की सच्चाई है। उत्तरी केरल में सीपीएम का वर्चस्व ऐसा है कि कई गांवों को पार्टी विलेज कहा जाता है। अब इन्हीं में आरएसएस की शाखाएं चलने लगी हैं।
फेस्टिवल उधर जाके मैं घर वापस जाता।
अच्छा।
हाँ, उस समय 10-15 आदमी, 5-10 आदमी, तलवार और कोडवाल को क्या बोलता था मुझे मालूम।
सीपीएम के पी सुरेंद्र 27 साल के थे जब 1986 में उन पर तलवारों से लैस आरएसएस के कुछ लोगों ने हमला कर दिया था। जान बच गई पर 2 साल तक इलाज चला। पैर में लगी गहरी चोट और कान के कट जाने से पुलिस की नौकरी का सपना भी छूट गया। वो कहते हैं कि मुझ पर हमला करने वालों में जो प्रमुख था वो कुछ समय बाद एक हमले में मारा गया, क्योंकि मेरे बाद उसने सीपीएम पर 2 और हमले भी किए थे। करीब 4 दशक से केरल में इन हमलों का सिलसिला चुनाव से पहले तेजी पकड़ लेता है। जगह जगह मारे गए पार्टी वर्कर्स के लिए स्मारक तक बनाए गए हैं। इन्हें हीरो या शहीद की तरह पेश कर दोनों ओर के क्रोध और जुनून को बरकरार रखा जाता है। साल 2012 में सीपीएम के नेता रहे टीपी चंद्रशेखरन की काट काट कर की गई बर्बर हत्या इस सिलसिले की कड़ी बन सकती थी। फर्क इतना कि इस बार हत्या भी सीपीएम की तरफ से की गई थी। वजह यह कि चंद्रशेखरन ने पार्टी की नीतियों की आलोचना कर एक दूसरी पार्टी रेवोल्यूशनरी मार्क्सिस्ट पार्टी बना ली थी। उनकी पत्नी रमा के बताती हैं,
അല്ല അവൻ ഇതൊക്കെതിരാണ്, പക്ഷെ അവൻ്റെ മനസ്സിൽ അവൻ്റെ അച്ഛനെ കൊന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രതിഷേധം അത് അവൻ്റെ മനസ്സിൽ അതിശക്തമായിട്ടുണ്ട്.
രമ കഹതി ഹൈ കി ശുരു മേ മേരാ ബേട്ടാ ബഹുത് ആവേഗ് മേ താ, ഉസേ ബദ്ലാ ലേനാ താ, പർ ഫിർ വോ സമജ് ഗയാ കി ഇസ്കാ കോയി അന്ത് നഹീ ഹൈ. ഇസി സോച് കേ സാത്ത് അബ് മേ സിപിഎം കേ ഹീ ഖിലാഫ് ചുനാവ് ലഡ് രഹീ ഹൂം. അബ് ബേട്ടാ അഭിനന്ദ് ഭീ ആശാവാൻ ഹോ ചലാ ഹൈ, കഹതാ ഹൈ ക്രാന്തി ആയേഗി, ആപ് ദേഖിയേഗാ, പൂരേ ദേശ് മേ ഛാത്ര ആവാസ് ഉഠാ രഹേ ഹൈ. पर बदलाव कितना मुश्किल है ये इस बात से जाहिर हो जाता है कि पिछले आम चुनाव तक केरल के कई पार्टी विलेजेस में मतदाताओं को अपना वोट दिखाकर डालना पड़ता था। हालांकि बीजेपी ने अभी तक केरल में कोई चुनावी जीत नहीं हासिल की, विश्लेषकों के मुताबिक उसकी तरफ मुड़ने वाले जो भी थोड़े लोग हैं वो सीपीएम से ही टूट रहे हैं। आखिर में सुजीत के दोस्त वीणू कहते हैं कि बदले की हत्याओं का ये सिलसिला अभी तो नहीं थमेगा।
तो अशोक जी, जैसा आप सुन रहे थे कि लोगों में अभी भी ये जो रोष है एक दूसरे के प्रति, पार्टियों से जुड़ा हुआ, जो पार्टियां बरकरार रखे हुए हैं, ये अभी थमा नहीं है और ये एक रोल प्ले कर सकता है कि वोट बीजेपी की तरफ जाता है कि वाम पार्टियों की तरफ।
जी, ये तो पुराना मुद्दा है केरल की राजनीतिक हिंसा का। इस दौरान एक और मुद्दा उठा जिसको केरल बनाम सोमालिया करके पेश किया गया, क्या आपको लगता है वो मुद्दा भी कुछ चुनाव में कुछ काम करेगा?
बिल्कुल, विश्लेषक कह रहे हैं कि ये बीजेपी को इससे हानि हो सकती है, क्योंकि ये जो कंपैरिजन किया गया, ये लोगों की जैसे आहत हुए यहाँ पे लोगों की, एक मलयाली अस्मिता को ठेस पहुंची। और उसके बाद अमित शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कल और उसमें एक तस्वीर दिखाई जिसमें एक कुपोषित बच्चा था और कहा कि देखिए गलत नहीं कह रहे थे प्रधानमंत्री, और वो जो तस्वीर थी वो श्रीलंका की निकली, तो काफी एम्बैरेसमेंट बीजेपी के लिए।
बहुत बहुत शुक्रिया दिव्या आर्या इस तमाम जानकारी के लिए।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
और अब संडे दिन भर इस हफ्ते रिलीज हुई फिल्म अजहर, जिसमें क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन का किरदार निभा रहे हैं इमरान हाशमी और उनके साथ में है प्राची देसाई, लारा दत्ता और नरगिस फाकरी। तो इस बार एक मुलाकात करिए इस फिल्म के अभिनेता इमरान हाशमी और प्राची देसाई से संडे दिन भर में।
करके सांस सांस को भट्टी अब तू जाग मिलखा।
बस आजकल तो बन रही है स्पोर्ट्स बायोपिक्स, मतलब कि खिलाड़ियों की जिंदगी पर कहानियां, जैसे चक दे इंडिया, मैरी कॉम, भाग मिल्खा भाग। और अब इन्हीं बायोपिक्स में एक न्यू एडमिशन। फिल्म का नाम है अजहर, जिसमें नजर आ रहे हैं इमरान हाशमी एज अजहर, उनकी वाइफ बनकर आई हैं प्राची देसाई और संगीता बिजलानी बनकर आई हैं नरगिस फाखरी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है टोनी डिसूजा ने। तो इस बार बीबीसी में हैं इमरान हाशमी और प्राची देसाई। आपके साथ हूं मैं, यानी सुबिरन।
मैं किसी एमके शर्मा को नहीं जानता हूं।
150 प्लेयर्स हैं, 11 टीम्स हैं, फिर तेरा ही नाम क्यों?
जब अजहर को लगा कि उसके खेलने के दिन कम है तो उसने पैसे लेकर खेलना शुरू कर दिया।
इमरान और प्राची, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
थैंक यू।
अच्छा इमरान, पहले आपसे बात शुरू करते हैं। आप मोहम्मद अजहरुद्दीन का रोल निभा रहे हैं, कैसे आपने अजहरुद्दीन बनने की प्रैक्टिस की, आपको क्रिकेट किसने सिखाया, मतलब तैयारी कैसे की आपने?
मैंने अजहर भाई को फॉलो किया है 20 साल तक जब वो क्रिकेट खेल रहे थे, 15 साल, और बहुत बड़ा फैन रहा हूँ उनका, और उनकी लाइफ के बारे में बहुत सारी चीजें मैं जानता था। एंड ऑफ कोर्स स्क्रिप्ट वाज फैंटास्टिक, अजहर भाई आए ऑन बोर्ड। क्रिकेट सीखना बहुत मुश्किल था, जो एक्चुअली उनकी जो इतनी साल की एक्सपीरियंस हमें 3 महीने में मुझे सीखनी थी, तो वो थोड़ा टेस्टिंग था। अजहर भाई ने सिखाया मुझे क्रिकेट। मैं एक्चुअली टोनी और मैं चाहते थे कि अजहर भाई बाद में आए, पहले मैं एक कोच से थोड़ी हाथ सफाई कर लूँ, लेकिन अजहर भाई ने कहा कि नहीं, मैं इमरान को सिखाऊंगा पूरे 3 महीने, जो इट इज़ वेरी स्वीट टू डू दैट। और फिर एक्चुअली बाकायदा आए, वो 2-3 महीने तक उन्होंने सिखाया क्रिकेट, और जो कुछ भी सीख पाया उनकी वजह से, उनकी मेहनत की वजह से। क्रिकेट को लेकर इस साल 3 फिल्में रिलीज हो रही हैं, तो आई थिंक हमेशा क्रिकेट और बॉलीवुड का मेल हमेशा फायदेमंद रहा है। इस फिल्म में भी जिस तरह दूसरी 2 फिल्में अजहर भाई की जिंदगी पर फिल्म आधारित है, और गाने हैं, लव स्टोरीज हैं, और इट्स अ गुड मसाला हिंदी फिल्म। अजहर भाई का नाम जुड़ गया था इस एलिगेशन के साथ। उस वक्त उस उनके फेज में जिंदगी में मीडिया में बहुत सारी खबरें छपी थी। 2000 में मैच फिक्सिंग का कॉन्ट्रोवर्सी शुरू हुआ था हमारे देश में, और पूरी क्रिकेटिंग की दुनिया, फैंस और क्रिकेटर्स हिल गए थे इस कंट्रोवर्सी के साथ। उस पूरे फेज को हमने बाकायदा दिखाया है, बहुत डिटेल्ड तरीके से दिखाया है, मीडिया की स्टोरीज से, और खास करके जो अजहर भाई जो उन पे बीती, जो चीजें, उन जो कठिनाइयों का सामना उन्हें करना पड़ा, वो सब चीजें हमने दिखाई हैं इस फिल्म में।
चलिए अब आपकी कोस्टार की बात करते हैं। प्राची देसाई के साथ आप दोबारा काम कर रहे हैं, इससे पहले आप दोनों ने काम किया था फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में, और वो आपकी वाइफ, ऑन स्क्रीन वाइफ नौरीन का किरदार निभा रही हैं, और साथ में है नरगिस फाखरी जो संगीता बिजलानी का किरदार निभा रही हैं। कैसा लगा इनके साथ काम करके?
5 साल के बाद काम करना वंस अपॉन अ टाइम मुंबई के बाद, और बहुत अच्छा कैरेक्टर निभाया उन्होंने। नौरीन का कैरेक्टर बहुत मुश्किल कैरेक्टर था, तो शी इज प्लेड इट वेरी वेल, बहुत ही प्रोफेशनल है, वेरी चिल्ड आउट टू वर्क विद, आई रियली एंजॉयड वर्किंग विद हर सेकंड टाइम। नरगिस के साथ मेरी पहली फिल्म है, उनका कैरेक्टर संगीता का है, बहुत ही ग्लैमरस कैरेक्टर है, बहुत मजा आया। अगेन शी इज वेरी चिल्ड आउट, हमारी शूटिंग लंदन में थी, और बहुत काम किया, लेकिन शूटिंग पे जाने से पहले हमने काम कर लिया था वर्कशॉप्स के साथ, तो वहाँ पे वी वर जस्ट एंजॉयिंग आवरसेल्फ इन लंदन। शी इज अ गुड डांसर, तो ओए में उन्होंने अच्छी तरह परफॉर्म किया है, और आई थिंक एक कह सकते हैं ड्यूअलिटी, एक बहुत ही ऑपोजिट कैरेक्टर्स हैं, नौरीन का कैरेक्टर, प्राची का, जो एक बहुत ही घरेलू ट्रेडिशनल मुस्लिम लड़की है, उनके साथ अजहर भाई की अरेंज मैरिज हुई थी, और फिर ये कैरेक्टर संगीता का, जो एक ग्लैमरस कैरेक्टर है, फिल्म इंडस्ट्री का माहौल है फिल्म में, और एक अलग दुनिया से आती है।
थोड़ी देर पहले हमने इमरान हाशमी से बात की, अब बारी प्राची देसाई की। प्राची, 2006 में आपने पहला टीवी शो किया कसम से, जो एकता कपूर का सीरियल था। अब भी आप नजर आ रही हैं फिल्म अजहर में, जो एकता कपूर की ही प्रोडक्शन है। ये बताइए कि आपका जो रोल है वो है नौरीन का अजहर में, आप वाइफ बनी हैं ऑन स्क्रीन मोहम्मद अजहरुद्दीन की, तो इस किरदार को निभाने के लिए क्या रिसर्च किया, किस तरह की तैयारियाँ की?
हम सबके लिए नौरीन इज़ द ओनली पर्सन जिसके बारे में आई थिंक लोग बहुत ज़्यादा जानते नहीं है। द होल वर्ल्ड नोज अजहर, बट दे नो दैट ही वॉज मैरिड टू नौरीन एंड नथिंग बियॉन्ड दैट। इससे ज़्यादा एक्चुअली कोई रिसर्च डेटा, कोई कुछ भी अवेलेबल भी नहीं है, बिकॉज आई ट्राइड यू नो फाइंडिंग आउट, आई ट्राइड रिसर्चिंग एंड मुझे कुछ नहीं मिला। सो इट वॉज अ ह्यूज चैलेंज फॉर मी कि for somebody that I've never seen, for somebody that I've never met, to be playing that real life character and with the least bit of hope ki mujhe kabhi unse actually milne ka mauka milega ya nahi. I guess you know with Azhar it's a different thing. Humne unhe you know we've grown up watching him, humne unhe field par dekha hai, we know him for the style icon that he was, or you can watch his interviews, you know his life feeds, bahut kuch hai jisse hum I guess you can sort of build a whole character around it. But with Noreen kuch bhi nahi tha, so yes, I was relying on people's version of Noreen. I stuck to the script. I was really lucky that I actually got to meet Noreen. Hyderabad mein hamari mulaqat hui thi, and all those presumptions that I actually had about her, wo sare I think clarify ho gaye. I of course met a little more mature version of her. She's in a different phase of her life now. The girl I play in the film starts at I don't know 16 or 17, kyunki 16 साल में एक्चुअली नौरीन के अजहर के साथ शादी हुई थी. दैट वाज एन अरेंज मैरिज. आई गॉट द बेस्ट रोल इन द फिल्म. नौरीन इज अ ब्यूटिफुल मिस्ट्री.
ऐसा लगा कि काश मैं दूसरा किरदार निभा लेती, जो कि संगीता बिजलानी का है, जो नरगिस फाखरी जी निभा रही है. ऐसा लगा कि वो ग्लैमरस रोल मुझे क्यों नहीं मिला.
बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि संगीता का रोल कोई भी कर सकता है. मैं भी कर सकती थी, पर मुझे लगता है कि नौरीन का रोल मेरे सिवाय और कोई नहीं कर सकता है.
प्राची, ज्यादातर अब तक जो आपने किरदार निभाए हैं वो गर्ल नेक्स्ट डोर के रहे हैं, भोली भाली इनोसेंसी लड़की के किरदार निभाए हैं. आपको कहीं लगता है कि आप एक ही किस्म के रोल क्यों कर रही हैं? कहीं फंसा हुआ लगता है?
आपको ये मेरे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स से पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों. आई गेस इस इंडस्ट्री में ऐसे ही होता है कि अगर इफ़ समथिंग वर्क्स फॉर यू तो फिर आई गेस लोग दोबारा उसी चीज़ को दोबारा बार बार एक्सप्लॉइट करते रहते हैं. नो बडी वॉन्ट्स टू टेक अ न्यू चांस. तो ऐसे ही होता है कि अगर आपकी कोई इमेज बन गई है बिकॉज यू नो किसी ने एक चांस लिया था, आपको किसी रोल में कास्ट किया था, वो अगर इफ़ दैट फेड वेल, अगर लोगों को वो पसंद आया तो उसके बाद बस वही आपको ऑफर यू नो होता जाता है. यू ऑल गेट बेसिकली हम सब अपनी इमेज के एक विक्टिम बन जाते हैं. एंड आई गेस दैट्स व्हाट इट इज, दैट्स हाउ इट इज.
बहुत बहुत शुक्रिया इमरान हाशमी और प्राची देसाई.
बॉलीवुड सितारों से मुलाकात के बाद अब चलते हैं खेलों की दुनिया की तरफ. तो हमारे साथ मौजूद हैं आदेश कुमार गुप्त. आईपीएल में क्या कुछ हो रहा है आदेश जी, और दूसरे खेलों की क्या कुछ खबरें आज हैं?
जी देखिए, अगर आईपीएल की बात की जाए तो उसकी बहार तो है ही, लेकिन जैसे आपने जिक्र किया दूसरे खेलों का, तो टेनिस के कोर्ट पर शीर्ष वरीयता हासिल भारत की स्टार टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा और उनकी जोड़ीदार स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंगिस ने थोड़ी देर पहले रोम मास्टर टेनिस टूर्नामेंट में महिला युगल वर्ग का फाइनल अपने नाम किया. खिताबी मुकाबले में उन्होंने रूस की सातवीं वरीयता हासिल जोड़ी एकातरीना माकारोवा और इलीना वेस्नीना को 6-1, 6-7, 10-3 से मात दी, और इसी के साथ उन्होंने खिताबी जीत के सूखे को भी समाप्त किया. पिछले कुछ समय से ये स्टार जोड़ी, क्योंकि पिछले साल इन्होंने बेहिसाब खिताब अपने नाम किए थे, इस साल किसी की शायद नज़र लगी उन्हें कि फाइनल, सेमीफाइनल, और कई बार तो इन्हें पहले दौर में भी हार का
सामना करना पड़ा. कामयाबी मिल गई
जी, अब जीत की राह पकड़ ली है. लेकिन बैडमिंटन के कोर्ट पर भारतीय टीम फिसल गई. चीन में जारी थॉमस कप में आज भारतीय पुरुष टीम को ग्रुप बी में थाईलैंड के हाथों 3-2 से हार का सामना करना पड़ा. और अगर आईपीएल की बात की जाए तो आज दो मुकाबले हैं, लेकिन जो पहला मुकाबला थोड़ी देर पहले समाप्त हुआ वहां मोहाली में सनराइजर्स हैदराबाद ने किंग्स 11 पंजाब को 2 गेंद बाकी रहते उसी के घर में 7 विकेट से मात दी. आज हैदराबाद के सामने जीत के लिए 180 रनों का लक्ष्य था, और युवराज सिंह काफ़ी दिनों बाद चमके छाए. उन्होंने केवल 24 गेंदों पर 3 चौके और 3 छक्कों की मदद से 42 रन नाबाद रहते हुए बनाए. हालांकि कप्तान डेविड वार्नर के बल्ले से भी 52 रन निकले. शिखर धवन ने भी 25 रनों का योगदान दिया. इससे पहले आज किंग्स 11 पंजाब ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, और हाशिम आबला ने केवल 56 गेंदों पर 14 चौके और 2 छक्कों की मदद से 96 रन बनाकर सभी का दिल जीता, लेकिन वो अपनी टीम को नहीं जिता सके.
दूसरा मुकाबला आज किसका हो रहा है ये बता दीजिए जल्दी से.
जी, दूसरे मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना दिल्ली डेयरडेविल्स से होगा. दोनों टीमों के लिए अब एक एक मुकाबला जीतना बहुत महत्वपूर्ण है. अगर मुंबई इंडियंस मुकाबला हारती है तो फिर कहीं ना कहीं सुपर फोर में पहुँचने की उसकी उम्मीदों को बड़ा झटका लग सकता है.
बहुत बहुत शुक्रिया खेलों की इस तमाम जानकारी के लिए आदेश कुमार गुप्त जी. और अब कार्यक्रम के समापन की तरफ बढ़ने से पहले बारी मुख्य समाचारों की.
बीबीसी समाचार. यमन में अधिकारियों का कहना है कि देश के दक्षिण में हुए एक आत्मघाती हमले में पुलिस में हाल ही में भर्ती हुए 25 जवान मारे गए हैं. चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है. इराकी अधिकारियों के मुताबिक चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट ने राजधानी बगदाद के उत्तरी इलाके में एक गैस प्लांट पर आत्मघाती हमला किया है. सुरक्षा सूत्रों के मुताबिक कम से कम 14 लोगों की इस हमले में मौत हो गई है और 20 लोग घायल हुए हैं. चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट ने इराक में इस हमले की जिम्मेदारी ली है. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि सीवान में पत्रकार की हत्या से वो दुखी हैं और हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा. बिहार के सीवान में हिंदुस्तान अखबार के पत्रकार राजदेव रंजन की शुक्रवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. 18 साल के मैक्स वर्स्टैपन फॉर्मूला 1 रेस जीतने वाले सबसे कम उम्र के ड्राइवर बन गए हैं. बीबीसी समाचार.
तो दिन भर में अभी के लिए बस इतना ही। डेढ़ घंटे बाद आपसे मुलाकात होगी। कार्यक्रम होगा घटना चक्र। इस कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे राजेश चौहान। अशोक कुमार को सभी साथियों के साथ फिलहाल दीजिए अनुमति। नमस्कार।